गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी घरों में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अब हम बात करते हैं हमारे कोर्स की स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। ये दो पार्ट में डिवाइड है, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन के यूनिट 4 और 5 हैं जो ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पहले 3 यूनिट की बात कर लें। थोड़ा ब्रीफ में मैं बता दूं आपको, जो फर्स्ट यूनिट में हमें केवल परफॉर्मेंस को मेज़र करना, किस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं, कौन से उसके ट्रेडिशनल टूल्स हैं, ट्रेडिशनल मेज़रमेंट के टेक्निक्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट हमारा उसको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है उससे रिलेटेड है, उसकी कौन कौन से साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, जापानी टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारा तीसरा यूनिट है रिस्क मेज़रमेंट से रिलेटेड, रिस्क क्या होता है, कैसे उसको मेज़र किया जा सकता है और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास में जो मेथड हैं ताकि हम रिस्क, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क जितना होगा अगर उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है, तो रिटर्न उसका उतना ही इंक्रीज़ हो सकता है। और इसी में साथ में डिस्ट्रेस एनालिसिस का भी पार्ट आएगा, जिसमें कि सिक कंपनीज़ कौन सी होती है, किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो कंपनी बैंकरप्सी की कगार पर आ चुकी है, इंसॉल्वेंट हो सकती हैं, जो कि डिस्ट्रेस रिलेटेड हैं, उनको मेज़र करना डिस्ट्रेस को, और उसकी कुछ प्रिडिक्शन के मॉडल्स भी पढ़ेंगे, जिसमें अल्टमैन का मॉडल इम्पॉर्टेंट है, और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि उसको एक वापस सही ट्रैक पे लाया जा सके उस कंपनी को, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है प्रिडिक्शन मॉडल। अब हम बात करेंगे वापस से यूनिट फर्स्ट, जो कि हम सबसे पहले करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास जो चैप्टर्स आएंगे वो हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो बेसिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है इसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर हम उसको फाइनेंस रिलेट करेंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को फाइनेंस से करके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैलकुलेट करेंगे। इसी परफॉर्मेंस का प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम फाइंड आउट करेंगे, साथ में प्रॉफिट का कस्टमर से रिलेशन फाइंड आउट करके वो प्रॉफिट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, ये टेक्निक भी हम देखेंगे थोड़ा। और एक चैप्टर आएगा इसी में सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इस तरह से ये 5 चैप्टर मिलकर हमारा पहला यूनिट बना हुआ है। सबसे पहले देखिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में 2 चीज़ आपको पढ़नी है, इसका कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्चुअली यह एक ऐसी कंटिन्यू चलने वाली एक प्रोसेस है, जिससे कि हम एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और उनके इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ में मैच करके लिंक कर सकते हैं। तो उससे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ डेवलपमेंट के साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल जो है अचीव कर सकते हैं, इसलिए इसका इम्पॉर्टेंट रोल हो रहा है। तो इसमें 2 चीज़ें मेनली सामने आ रही है, 1 दैट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें केवल हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, देन उसको क्या करें, हम उसको परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व भी करते हैं, साथ में उसको फीडबैक कैलकुलेट करते हैं, फीडबैक के अकॉर्डिंग उसका रिवार्ड्स जो है वो तय किया जाता है, उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, ये सारा जो टेक्निक इसमें बताई जाती है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, लिंक टू मिशन एंड गोल्स, यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपस में इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को रिलेट किया जाता है, दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट किया जाता है कि इंडिविजुअल का जो गोल है वो उसी ट्रैक पर चले जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो, वो सेल्फ अप्रिशिएट नहीं होके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। इट मीन्स ये क्या इंश्योर करता है, एम्प्लॉयज़ आर अवेयर ऑफ देयर परफॉर्मेंस, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस की जानकारी मिलती रहे, अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड, उनसे एक फर्म जहाँ पे वो एम्प्लॉय हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, किस तरह की परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है, रिसीव टाइमली फीडबैक, और उसका फीडबैक दिया जाना टाइम टाइम पे, ताकि उन्हें आइडेंटिफाई हो रहा है कि वो वर्क जो कर रहे हैं वो कितना टारगेट अपना अचीव कर पाए हैं, एंड हैव अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. उनके लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक तरह की अपॉर्चुनिटी है. इससे उन्हें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, अपने आप को और इसको अपनी जो आर्ट है, अपनी जो स्किल्स हैं, अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाने में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के द्वारा वो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं. और जो उनके कॉम्पिटिटर या जो दूसरे उनके कलीग्स हैं, वो जिस लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सेम वो भी उसी टाइप की परफॉर्मेंस दे सके, इसके लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटी है. और रिसीव परफॉर्मेंस रेटिंग रिवार्ड इन ए फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर. उसको रेटिंग करना, जैसे क्रेडिट रेटिंग होती है उसी तरह परफॉर्मेंस को रेट करना. इसको 5 पॉइंट स्केल पे रेट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पे. तो वो किस कैडर में आ रहे हैं, अबोव एवरेज है, बिलो एवरेज है, ये सारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक बेनिफिशियल टूल है, जिसमें ये सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड होते हैं और इसके द्वारा वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आप को. इसमें एक वर्ड और भी आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल. ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से कैसे डिफरेंट है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वो जैसे हमने अभी समझा कि ये एक सिस्टमेटिक एनालिसिस की अप्रोच है, जो कि एम्प्लॉयज़ को या वर्कर को अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र करने में इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें वो अपनी मेज़र करने के साथ में परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर सकते हैं, और कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया है. बट परफॉर्मेंस अप्रेजल ये केवल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है. इसमें ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस कह सकते हैं, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है टाइम टू टाइम पर, इसका उनका अप्रेज किया जाना होता है. लेकिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्टॉप नहीं होती, ये एक प्रोसीजर होगी, एक टाइम पीरियड के बाद में परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है मेजर किया जा रहा है. लेकिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो कंटिन्यू चलता रहेगा, आप उसको परफॉर्मेंस को चेक करना है, इवेल्युएट करना है, इम्प्रूव करना है, तो ये टाइम टू टाइम कंटिन्यू चलता रहेगा. परफॉर्मेंस में अब देखिए कॉन्सेप्ट के बाद से कंपोनेंट पे हम थोड़ा सा देख लें. इसे कंपोनेंट में 5 कंपोनेंट आएंगे. फर्स्ट इज़ द परफॉर्मेंस प्लान. परफॉर्मेंस को प्लानिंग करना, उसके क्या फर्स्ट उनको टारगेट देना, उन्हें की परफॉर्मेंस एरिया से आइडेंटिफाई कराना, उनको अवगत कराना. ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाएगा जो उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं दोनों के बीच में. उनको एक बता दिया कि आपको इस टाइम में इतना टारगेट है वो अचीव करना है, तो पहले प्लानिंग डिसाइड कर ली कि व्हाट विल बी देयर रोल, व्हाट विल बी देयर वर्क, उनका वर्क क्या रहेगा. देन सेकेंड इसमें आ जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग. अब सपोज़ उनको हर मंथली टारगेट दे दिया, तो एक महीने के बाद में उनको चेक करेंगे, उनको रिव्यू किया जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है सेल्फ अप्रेजल हो गया. उसके बाद उसको रेटिंग करना कि अब वो जो टारगेट दिए गए थे वो उसमें से कितना अचीव कर पाए. तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ और द अप्रेजर फॉर द क्वान्टिफाइबल एंड मेजरेबल अचीवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बींग अप्रेज्ड. Then third, feedback on the performance followed by personal counseling. अब उसको चेक भी कर लिया, परफॉर्मेंस को रिव्यू भी कर लिया, देन अब फीडबैक देना है कि अब उसे ये पता होना चाहिए कि उसने जो वर्क किया है कहाँ कहाँ पे उसकी लैकिंग है, कहाँ उसकी शॉर्टकमिंग्स आ रही है, या वो उसका कितना वर्क है, एवरेज है, एवरेज से भी बिलो है, कहाँ उसको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. राइट, जब वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, कि पहले से पता तो हो कि वो किस स्टेटस, उसका स्टेटस क्या है, वो किस स्टेज पर आ रहा है. ठीक है, तो कंपेयर करेगा अपने आप को अपने कलीग्स से कंपेयर करेगा और अपने आप को इम्प्रूव करेगा. अदरवाइज इम्प्रूव की ऑर्गेनाइजेशन उसको फैसिलिटी देती है डेवलपमेंट की, ट्रेनिंग की, तो इस तरह की प्रोसीजर के द्वारा कर सकता है. तो इम्प्रूवमेंट भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ही पार्ट है. इसके साथ में उसको पर्सनल काउंसलिंग भी दी जाएगी कि वो और क्या इस एरिया में किस तरह से और अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, उसके लिए मोटिवेट किया जाएगा। देन रिवार्डिंग गुड परफॉर्मेंस, अगर आपका अच्छी परफॉर्मेंस है, अबोव एवरेज है, या आपका जो टारगेट अचीव कर लिए गए हैं, तो उस कंडीशन में उसको रिवार्ड देना उसका राइट बनता है, तो उसको रिवार्ड करने की भी प्रोसीजर है। एंड लास्ट में परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान, अब ये उनको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू उनको इम्प्रूवमेंट करना, इट इज़ एक्सपेक्टेशन, उनकी एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन से अवगत कराया जाता है, उनको डेडलाइन भी दी जाती है। मीन्स दोनों ही हैं, इम्प्रूवमेंट के चांस आपको दिए भी जाएंगे, लेकिन डेडलाइन थोड़ा स्ट्रिक्टली होके, ताकि उन्हें अचीव करना ही है ये टारगेट, वो भी इसमें मेंशन होगा। तो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान, इस तरह से आपका ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रहेगा। अब अगले जो चैप्टर्स हम करेंगे उसमें इसी को, जो परफॉर्मेंस की प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करना है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस चेक करते हैं, देख